संपत्ति के अधिकार की स्थिति, पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी, मौलिक संविधान में धारा 19 ब्रैकेट में 1F और धारा 31 के अधीन नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। धारा 19(1)(f) के अधीन नागरिकों को संपत्ति प्राप्त करने, बनाए रखने और बेचने का अधिकार प्राप्त था। धारा 31 के अधीन व्यवस्था की गई थी कि राज्य कानून की सत्ता के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों को मुख्य रखकर कानून के अनुसार व्यक्ति की संपत्ति प्राप्त कर सकती थी, परंतु संपत्ति के बदले में संबंधित व्यक्ति को क्षतिपूर्ण कॉम्पेंसेशन दी जानी आवश्यक थी। परंतु संविधान के लागू करने के शीघ्र ही पश्चात संपत्ति के अधिकार को मुख्य रखकर विवाद खड़ा हो गया। सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाए गए, परंतु न्यायालयों ने ऐसे कदमों को संपत्ति के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया और इस प्रकार राज्य विधानमंडलों और संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए आज तक निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला संशोधन 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। 1951 में किए गए संविधान के पहले संशोधन के अधीन धारा 31 में दो नई धाराएं 31A और 31B तथा 9वीं अनुसूची संविधान में सम्मिलित की गई। धारा 31A के अधीन व्यवस्था की गई कि यदि सार्वजनिक हितों को मुख्य रखकर राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त की जाती है तो ऐसे कार्य को इस आधार पर पेज 89 न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये धारा 14, 19 तथा 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। धारा 31B के अधीन जिम्मेदारी की समाप्ति के लिए 13 कानून 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिए गए और इन कानूनों को न्यायिक निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया। चौथा संशोधन 1955, फोर्थ अमेंडमेंट 1955 में किए गए चौथे संशोधन के अधीन व्यवस्था की गई कि संसद अथवा विधानमंडलों द्वारा निर्धारित की मुआवजे की रकम को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। 25वां संशोधन 1971, 25th अमेंडमेंट 1971। 25वें संशोधन के अधीन क्षतिपूर्ति कॉम्पनसेशन शब्द के स्थान पर राशि अमाउंट शब्द रखा गया। इसके अतिरिक्त एक नई धारा 31C जोड़कर व्यवस्था की गई कि धारा 39B और सी में सम्मिलित निर्देशक सिद्धांतों को वास्तविक रूप देने के लिए बनाए गए कानूनों को इस आधार पर न्यायालयों द्वारा रद्द नहीं किया जा सकेगा कि ये धारा 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हैं। 42वां संशोधन 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976। 42वें संशोधन के द्वारा 31C का क्षेत्र विशाल कर दिया गया। व्यवस्था की गई धारा 39B और सी में सम्मिलित निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया कानून इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि ये धारा 14, 19 और 31 में सम्मिलित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 44वां संशोधन और संपत्ति का अधिकार, 44th अमेंडमेंट एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ऊपर लिखित विचारों को पढ़ने के पश्चात हम देखते हैं कि आरंभ से ही संपत्ति का अधिकार सरकार की सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की नीति के रास्ते में बाधा बना रहा। इस बाधा को दूर करने के लिए 1979 में किए गए 44वें संशोधन के अधीन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकालकर कानूनी अधिकार, लीगल राइट का स्तर दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में से धारा 19(1)(f) और धारा 31A, 31B और 31C को निकाल दिया गया है और नई धारा 300A जोड़कर व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की सत्ता के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका अभिप्राय है कि नागरिक संपत्ति रख सकते हैं, बेच सकते हैं और किसी को भी कानून की शक्ति के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और कानूनी अधिकार, लीगल राइट में अंतर केवल यह है कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन संवैधानिक संशोधन द्वारा किया जा सकता है, जबकि कानूनी अधिकार में परिवर्तन साधारण कानून द्वारा किया जा सकता है।